हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 271 कार में सुनैना ने आदित्य से अनय को लेकर सवाल किया और उससे मिलने के लिए भी कहा। इस बात पर आदित्य थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे भी उस दिन की बात याद आ गई जब वो यहाँ नहीं था और अनय उसे ढूंढता हुआ उसके घर आया था। उसने उसे ढूंढने में सुनैना की मदद भी की थी, लेकिन उसके बाद से वो कहाँ है? आदित्य के बारे में उसे पता चला या नहीं? और अगर पता चला तो फिर वो दोबारा खुद ही आदित्य से मिलने क्यों नहीं आया? जब वो उसकी पत्नी से मिल सकता है, उसके बारे में उसे बता सकता है, तो फिर खुद वो आदित्य के सामने क्यों नहीं आ रहा है? आदित्य ये सब सोचने लगा। तभी सुनैना ने अपना हाथ हवा में उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, इतना मत सोचो, और अगर वो नहीं आया तो तुम भी खुद से पहल कर सकते हो। आदि, देखो, हमारे आसपास सारे लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे बुरे की पहचान तो तुम्हें बखूबी है ना? आदित्य समझ रहा था कि सुनैना क्या कहना चाह रही है, इसलिए उसकी बात समझते हुए उसने हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, मुझे समझ आ रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उससे मिलूं और बातचीत करूं, साथ ही उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। और साथ ही मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं सबसे ज़्यादा कनेक्शन और अटैचमेंट से ही घबराता और दूर भागता हूं। फिर भी पता नहीं क्यों तुम वही सब मेरे आसपास लेकर आ रही हो। क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है मिस्टर सिंघानिया। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे, तुम्हारे लिए चीज़ें उतनी ही आसान हो जाएंगी, सुनैना ने उसके माथे पर हल्के से मारते हुए कहा। उसकी इस बात पर आदित्य जबरदस्ती मुस्कुराया। वो दोनों इसके आगे कोई बातचीत कर पाते इससे पहले ही उनकी कार अस्पताल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गई और रवि ने अस्पताल के दरवाजे के सामने कार रोक दी। कार रुकते ही सुनैना ने खिड़की से झांककर बाहर की तरफ देखा और आदित्य से पहले ही कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल गई। आदित्य का शायद कार से बाहर निकलने का मन ही नहीं था। सुनैना ने झुककर खिड़की से झांकते हुए कार के अंदर देखा और आदित्य से कहा, ओ हेलो, कार से बाहर निकलने का इरादा है या फिर मैं डॉक्टर को यहाँ पर ही बुला कर ले आऊँ? कार में ही चेकअप कर लेंगे और हम यहीं से वापस चले जाएंगे, कैसा रहेगा बताओ? निकल रहा हूँ, ये हर बात में ताना मारना ज़रूरी होता है क्या? और वैसे भी मैं बस ये सोच रहा था कि हम तीनों ही यहाँ पर हैं तो पता नहीं ऑफिस के क्या हाल होंगे। अस्पताल के अंदर जाने से पहले एक आखिरी बहाना बनाते हुए आदित्य ने कहा। रवि ने उसकी बात का जवाब देते हुए तुरंत ही बोला, डोंट वरी सर, शिवानी और हमारे हेड मैनेजर मिलकर सब कुछ संभाल रहे हैं। मैं उनको निर्देश देकर आया हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं सब कुछ व्यक्तिगत रूप से जाँच करूँगा। पता चल गया ऑफिस के हालचाल, अब चलो और अपना हालचाल पता करो, हमेशा बेहाल ही रहते हो। सुनैना ने इस बार आदित्य का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे कार से बाहर निकाला और साथ में अस्पताल के अंदर ले गई। आदित्य डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसके रक्त के नमूने फिर से जांच के लिए भेज दिए गए। इन सब प्रक्रियाओं में आदित्य का मुंह बना हुआ था और वो मन ही मन सब कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सुनैना गुस्से में घूर रही है, वो एकदम सामान्य हो गया और डॉक्टर के सारे निर्देश मानने लगा। वो किसी भी कीमत पर सुनैना को नाराज नहीं करना चाहता था। चिकित्सा जांच के अलावा आदित्य के कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हो रहे थे, जिससे उसके अवसाद और अन्य भय और चिंता का इलाज किया जाएगा। आदित्य कभी भी इन सारे उपचारों के लिए तैयार नहीं होता और वो अस्पताल भी बहुत कम आता है, लेकिन अभी सुनैना की वजह से वो इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं कर पाया। सुनैना उसकी तरफ देखकर खुश थी, तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक सूचना की ध्वनि बजाई। सुनैना फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बगल में खड़ी होकर आदित्य को ही देख रही थी। तभी संदेश आने की ध्वनि सुनकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन अनलॉक किया और संदेश देखने लगी। विराज का मैसेज, इतने दिनों के बाद? स्क्रीन की तरफ देखते हुए सुनैना के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला और फिर वो उसे खोलकर पढ़ने लगी। क्रमशः